आते हैं हमारे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अब हम लोग साजा के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। रेडी हैं सब लोग? नोट्स, पेंसिल, पेन, डेस्क शुड बी क्लीन। ठीक है, ये कल का पेपर है आज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو زیادہ اپنا لگ رہا ہوگا اور اسی لیے آخر میں آیا نا تو اپنائیت اینڈ پہ ہی آتی ہے الحمدللہ آپ دیکھیں کہ we are all about our اخلاق جو بھی ہماری زندگی ہے جو ہمارا دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے اس سب کی جو اصل روٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو سنوارتے ہیں اور کتنا اچھا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہم بہت پہلے سیکھ چکے ہوتے ہیں ہماری زندگی ایک بالکل مختلف زندگی ہوتی آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا کریکٹر جو ہے نا یعنی جو ہمارا کریکٹر ہے یہ ہمارا فیوچر چوز کرتا ہے یہ بھی ایک جملہ لکھ لیں جیسا کریکٹر ہوگا نا ویسا آپ کا فیوچر ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ مجھے کسی نے آگے نہیں بڑھنے دیا میری لیگ پولنگ کی اور میرے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں ساری زندگی مجھے کسی نے آگے نہیں بڑھنے دیا آپ ایسے بہت سارے نگیٹو جملے بہت سارے لوگوں سے سنیں گے اگر یہ جملہ ہم اپنے لیے بول لیں نا کہ اوخو میری عادات نے مجھے آگے بڑھنے نہیں دیا اور عادت نہیں میں اپنے لیے ایک دعا کرتی ہوں آپ کو بھی سکھا دیتی ہوں آج عادت کبھی کبھی ہم سب کی کوئی ایک عادت ہوتی ہے صرف جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک لیتی ہے آج آپ نے وہ ڈھونڈنی ہے یقین کریں میں یہ بات بالکل بغیر مبالغے کے کہہ رہی ہوں اور آپ کو کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ملے گی یہ بات لیکن انسانوں کی 100 کتابیں آپ کے ارد گرد ہیں نا چلے 100 کو کم کر لیں ہر ایک کے پاس 100 لوگ نہیں ہوتے پڑھنے کے لیے 10 لوگ جن کو آپ ارد گرد دیکھتے ہیں نا اپنے جانتے ہیں ہر اینگل سے اچھے کامیاب سے کامیاب بھی ناکام سے ناکام بھی آپ دیکھیے گا کہ بعض لوگوں کی صرف ایک عادت ان کو بہت آگے لے جاتی ہے اور بعض لوگوں کی ایک عادت سارے جذبے ہونے کے باوجود سچائیاں ہونے کے باوجود خلوص ہونے کے باوجود کچھ کرنے کی خواہش ہونے کے باوجود نہیں کرنے دیتی وہ ایک عادت ہوتی ہے وہ ڈیلینگ ہیبٹ ہو سکتی ہے وہ کننگ ہونا ہو سکتی ہے وہ دوسروں میں کچھ زیادہ ہی تجسس رکھنا ہو سکتی ہے وہ اپنے اوپر رحم کھانا ہو سکتی ہے سیلف پٹی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی جو ایک اچھی عادت آگے لے جاتی کیونکہ آج کل تو ہم اچھی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا تو یقین کریں ڈیڈیکیشن میں اپنی زندگی کا آپ کو خلاصہ بتاؤں میں نکمے سے نکمے بندے کے ساتھ کام کر سکتی ہوں میں اس کو سکھا لوں گی میں اس کو پڑھا لوں گی میں اس کو ٹریننگ کر دوں گی میں اس کی 100 غلطیاں بھی مان لوں گی کیوں اگر وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ہوا برولے اور اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے نہ ہونے والے اور جو کچھ بھی یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا سنا ہوا لفظ پتہ ہی نہیں ہوتا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے وہ کیا ایک دم وہ نہیں میں نے یہ مائنڈ چینج کر لیا وہ اپنی جڑوں پہ نہیں کھڑے ہوتے وہ جتنے مرضی اسکلڈ کیوں نہ ہو وہ آپ کے لیے درد سر ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ابھی آ بھی رہیں گے نہیں آ رہے آپ کو پتہ ہی نہیں اگلے مہینے انہوں نے کیا اور سوچ لیا ہے تو بی کنسسٹنٹ جوں کو کام کرنے دیجیے آپ پھر دیکھیے ایک ہفتے کے اندر آپ کے سارے سر میں کیا گھن ڈال کے جاتی ہے کام کر رہی ہے سر ڈال کر کام کرتی ہے آپ چونٹیوں کو ذرا آنے کی اجازت دے دیں گھر میں کیا کچھ آپ کا ادھر سے ادھر وہ موو کر دیں گی بی کنسسٹنٹ میری نظر میں کسی بندے کی سب سے بڑی ویلیو کیا ہے ہاؤ مچ ہی اور شی از ریلائبل ہاؤ مچ از یورس وہ آپ کا کتنا ہے اس کا دل دماغ سوچ آپ کے اس کام کے ساتھ کتنی ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں اگر اس کا پیشن نہیں ہے تو مت دیں ایسے ہی راہ جاتے مروت میں کوئی کام پکڑ لیتا بندہ کر نہیں سکتا صرف آپ اس کام کو کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنا لگتا ہے آپ نے کہا تھا میں نے کر دیا آپ نے دیا تھا میں نے کر لیا آپ کہہ رہے ہیں میرے سے ہو نہیں رہا آئی ایم ٹرائنگ نہیں ہوگا چھوڑ دیں آپ خام خواہ جگلنگ ہے کچھ اور نہیں ہے تو اٹس اوکے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ جیسے بہت سارے لوگوں کو پھر ہمیں برداشت ہی کرنا پڑتا ہے نا جب ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی لیکن بیسٹ لوگ وہ ہوتے ہیں जो उस काम को अपना अपना समझ लेते हैं। तो अगर आपने मैंने अपनी सक्सेस को सोच लिया ना, यानी ये सब में जो हम पढ़ रहे हैं ना आजकल, अखलाक की सक्सेस स्टोरी है आपकी मेरी कामयाबी। आप कहेंगे आप कौन सा वक्त रह गया हमारा अपनी कामयाबियों का देखने का, तो अभी तो वक्त शुरू हुआ है। फिर क्या हुआ, अगर पिछली ज़िंदगी में हमने कुछ तजुर्बे किए तो फिर उसको हमने पूरा अब आगे ख्वाब देख लेते हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं हो सका वो अब करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। मैं पढ़ लेती हूँ खुतबा, आप लोग भी देख लें। आप सब रेडी हैं? सबके टेबल ऐसे होने चाहिए जैसे जहन चाहते हैं इस वक्त हम अपना, बिल्कुल वाइट, क्लीन, प्योर। कोई ऐसी चीज़ ना रखिए अपने सामने कि जो आपकी तवज्जो या मेरी तवज्जो झुटला दे, बदल दे। और इंशाल्लाह ताला हम इसमें से देखेंगे कि आज हमारे लिए क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल ख़ैर। इस्लाम ए टू ज़ी में से आजकल हम पढ़ रहे हैं अखलाक ए टू ज़ी, और उसमें से भी आजकल हम पढ़ रहे हैं अखलाक हसना या अखलाक फ़ादिला। क्या है लफ्ज़ बोलिए? फाजिला। फाजिला क्या, फादिल क्या, फजल क्या? फजल कहते हैं एक्स्ट्रा को, फाजिल एक्स्ट्रा। जब हम अल्लाह का फजल मांगते हैं ना, तो असल में हम कह रहे होते हैं कि अल्लाह हमारी औकात नहीं है तो अपने पास से दे दे, हमारे पास अमल कोई नहीं है, पैसे कोई नहीं है, तू दे दे, ये मुराद है। ठीक है, तो अखलाक के फाजिला क्या कि वो चीज़ें जो इंसान वाकई अपने हिसाब से अल्लाह ताला से मांग लेता है। इसमें हम आज करेंगे रहम को। रहम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान और अर्रहीम। आज आपको पता चलेगा कि मुसलमान के हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों है, और कुरान के आगाज़ में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्यों है, और कुरान की चार सूरतों के शुरू में लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ के ऊपर आप जितना गौर व फिक्र करते जाएंगे आपको इस चीज़ का यकीन आ जाएगा कि रब की सबसे पसंदीदा खूबी अल्लाह सुबहाना ताला को, जो अपनी चीज़ खुद बड़ी पसंद है, वो क्या है? कतब अला नफ्सिहि रहमा, उसने लिख लिया है अपने नफ्स पर रहमत को। अल्लाह ताला को अपने लिए जो चीज़ पसंद है वो रहमत पसंद है, और हकीकत यह है कि रहमत ही की बुनियाद पे ये दुनिया चल रही है। अल्लाह का असूल कानून, अल्लाह सुबहाना ताला की ज़ात, जो चीज़ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट करके पेश करते हैं वो रहमत है। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की ये रहमत इतनी वसी है कि आज इस दुनिया में उसकी रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है। बुखारी की रिवायत 6000 यानी 6000, अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि रहमत के 100 हिस्से हैं, इनमें से 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हुए, सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन पर उतारा है, और इसकी वजह से तुम देखते हो कि मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है, यहाँ तक कि घोड़ी भी अपने बच्चे को सुम नहीं लगने देती, यानी अपने पाँव के नीचे नहीं रोनती, बल्कि सुमों को उठा लेती है कि कहीं इससे इस बच्चे को तकलीफ़ ना पहुँचे। और अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर गालिब है। ये बात कहाँ लिखी है? बुखारी 7404। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, जब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा कर चुके तो अपने पास मौजूद किताब, क्या नाम है उसका? लाहे महफूज। कमा खलक अल्लाहु खलका कतब फ़ी किताब ही फ़हुवा इंदहु। जो किताब उसके पास है, और वो कहाँ है? फ़ौक़ अल-अर्शी, अर्श के ऊपर। उस पर एक जुमला लिखा, इन्ना रहमती तगलिबु गदबी, बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब होगी। ये है, इसलिए अल्लाह आज काफिरों को भी पानी के घूंट दे रहा है, और मोमिनों को भी दे रहा है, फाजरों को भी दे रहा है, फासिकों को भी दे रहा है, कि अल्लाह ताला को गुस्सा जब आता है ना अपने बंदों पे, तो अल्लाह उसके ऊपर रहमत की चादर डाल देता है। और इसी वजह से आज आप और मैं जी रहे हैं, इतने गुनाहों और इतनी कमियों के बावजूद बाइज्जत तरीके से दुनिया में इंसान जीता है। ये आपकी मेरी खूबी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। कभी किसी को ताना मिला करके क्या आए हो, कभी किसी को किसी महफिल में अंदर गैब से आवाज़ आई ये जो कह रहा है झूठ बोल रहा है। हम सामने झूठ बोल रहे होते हैं लोगों के, हम कलाबे मिला रहे होते हैं, लोग धोखा दे रहे होते हैं, लोगों के सामने अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं। अल्लाह चाहे तो आवाज़ लगवा दे, नहीं लगाता, गज़ब के ऊपर रहमत गालिब है। और अल्लाह अपने बंदों से कैसे रहमत करता है, हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत है, बुखारी 5999। आपके पास यानी नबी सल्लम के पास कुछ कैदी आए, कैदियों में एक औरत भी थी, और पूरी दलाइल और रिवायत पूरी डिटेल से मौजूद है कि उसके पिस्तान दूध से भरे हुए थे, यानी नर्सिंग मदर थी, और वो इधर दौड़ रही है उधर दौड़ रही है, यानी उसका बच्चा गुम गया। इतने में एक बच्चा कैदियों में मिला, इसने झट अपने बच्चे को पेट से लगाया और उसको दूध पिलाने लगी। अल्लाह के नबी सल्लम भी ये मंज़र देख रहे थे, सहाबा से कहा क्या तुम ख्याल कर सकते हो कि ये औरत अपने इस बच्चे को पकड़े और किसी आग के तंदूर में फेंक दे। सहाबा ने कहा कि जब तक इसको इख्तियार दिया जाएगा ये ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं, बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि वो बच्चा धूप में निकल गया और उसके पाँव जलने लगे, तो वो माँ जब उसको मिलती है तो उसका मुँह नहीं चूमती, उसके पाँव के तलवे चुन लेती है कि मेरे बच्चे के पाँव जले। तो कहा कि ये तो इसको आग में नहीं डालेगी। उस पे फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर इससे भी ज़्यादा रहम करने वाला है जितना ये औरत अपने बच्चे पे मेहरबान हो सकती है। यकीन करें, हमने अल्लाह की रहमत को समझा ही नहीं है। और क्या सिर्फ़ अल्लाह ही रहमत करता है? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी रहमत थे। कहाँ लिखा है? सही मुस्लिम 2355 2355 अबू मूसा अलैहिश्शरी से कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमसे अपने कई नाम बयान किए कि मेरे बहुत सारे नाम हैं। फिर आपने फरमाया मैं मोहम्मद भी हूँ और अहमद भी हूँ, और मैं मख़फ़िया भी हूँ और हाशिर भी हूँ, नबी तौबा भी हूँ और नबी रहमा भी हूँ। यानी यहाँ अल्लाह के नबी का आप नाम लिख सकते हैं, रहमत वाला नबी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आपसे पूछा गया अल्लाह के रसूल मुशरिकों के ख़िलाफ़ बददुआ कर दें, किसी मौके पे कहा होगा, आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे लानत करने वाला बना कर नहीं भेजा बल्कि मुझे तो रहमत बना कर भेजा है। सही मुस्लिम 6613। और क्या नबी के बाद नबी के साथी भी आपस में रहम करते थे? बिल्कुल करते थे। सूरत फतह आयत 29, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, और वल्लज़ीन मअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो कुफ्फार पर सख्त हैं लेकिन रहमाउ बैनहुम, आपस में रहम वाले हैं। तो हमें भी एक दूसरे के साथ रहम वाला बनना चाहिए। सवाल पैदा होता है कि रहम दिल लोगों का क्या होगा? तो लिख लीजिए कि रहम दिल लोग जन्नत में जाएंगे। कोई जन्नत में ऐसा शख्स नहीं जाएगा जिसके दिल में रहम ना हो। सही मुस्लिम की रिवायत है 7207। अल्लाह के नबी ने अपने खुतबे में फरमाया कि जन्नती लोग तीन किस्म के होंगे। नंबर एक, हकूमत के साथ इंसाफ करने वाले, सदका व खैरात करने वाले, तौफीक दिए हुए, यानी ये एक कैटेगरी है। हकूमत के साथ इंसाफ करते हैं यानी टैक्स चोरी नहीं करते और हकूमत के रूल्स को ब्रेकअप नहीं करते, और सदका खैरात भी बहुत करते हैं, अल्लाह ने उनको तौफीक दी हुई अच्छे कामों की। दूसरी किस्म वो है, वो आदमी के जो अपने तमाम रिश्तेदारों और मुसलमानों के लिए रहीम और नरम दिल हो। सोचिए ज़रा, तमाम रिश्तेदार, क्या मैं इसमें आती हूँ? कोई एक तो ज़रूर होगा जिसके ऊपर गुस्सा आता रहता है, हाँ? और मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए रहीम और नरम दिल। और तीसरा वो शख्स जो पाक दामन, पाकीज़ा खल्क वाला और अयालदार भी हो यानी बच्चे हों, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ ना फैलाता हो। कोई ऐसी मिसाल है कि जिससे हमें मोमिनों की आपस में रहम दिली नज़र आए? तो अल्लाह के नबी ने इसकी बहुत प्यारी मिसाल दी, बुखारी 601 और मुस्लिम 2585। 86 नौमान बिन बशीर से, कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मोमिनों को आपस में एक दूसरे के साथ रहमत व मोहब्बत का मामला करने और एक दूसरे के साथ लुत्फ़ व नरम खुई में एक जैसा पाओगे कि जब इसका कोई एक टुकड़ा भी तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म तकलीफ़ में होता है, ऐसी कि नींद उड़ जाती है और जिस्म बुखार में मुबतला हो जाता है। यानी मोमिनों का आपस में मामला ऐसा होना चाहिए कि एक दुखी हो तो बाकियों को भी अपना सुख सुख ना लगे। क्या बच्चों पे भी रहमत की जा सकती है? बिल्कुल करनी चाहिए। बुखारी की रिवायत है 5998 और मुस्लिम 2317 आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, कहती कि एक देहाती था, यानी बेचारा सीधा साधा शख्स होगा, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और आप उस वक़्त किसी बच्चे से प्यार कर रहे थे, हसन था या हुसैन कोई भी होगा। खैर, उसने जब आपको बच्चे को प्यार करते किस करते देखा, कहने लगा, अल्लाह के नबी आप बच्चों को किस करते हैं, यानी बोसा देते हैं? हम तो इन्हें बोसा नहीं देते, यानी मैं नहीं करता बच्चों से प्यार, और बल्कि यहाँ तक आता है उसने कहा मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैं तो कोई नहीं किसी को प्यार करता। तो आपने फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो बच्चों से भी प्यार करना चाहिए, ये भी नरम दिली की अलामत है। ना करेंगे रहम तो क्या होगा? बुखारी 7376 और मुस्लिम 2319 हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी इस पर रहम नहीं खाता, और जो रहम नहीं करेगा ना वो शकी है, बदबخت। इसकी दलील अबू हुरैरा से, कहते हैं मैंने अबुल कासिम से सुना, कौन थे अबुल कासिम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि क्या कहा कि रहमत नहीं निकाल ली जाती मगर किसी के दिल से जो कि शकीउल कल्ब हो, यानी किसी के दिल से भी अल्लाह रहमत नहीं निकालता लेकिन बदबخت के दिल से निकाल लेता है। तिर्मिज़ी 1923 था। और याद रखिए कि रहमत जब अल्लाह से मांगे ना तो थोड़ी ना मांगे, ज़्यादा मांगे। बुखारी की रिवायत है 6010, हज़रत अबू हुरैरा ही रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हुए, हम भी आपके साथ खड़े हो गए। जो ही नमाज़ पढ़ के फारिग हुए एक देहाती आया और दुआ करने लगा, ए अल्लाह मुझ पर रहम कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कर और हमारे साथ किसी और पर रहम ना करना। यानी उसने डिस्टिंग्विश कर लिया, वो जिसको आप भी झूठ बोलते हैं ओनली फॉर यू, और चार कार्ड खरीदते हैं ओनली फॉर यू के, चार लोगों से तो तीन से तो झूठ बोलेंगे ना, एक को सच्चा भी दे दिया अगर, तो कहने का बस मेरे पे रहमत और आप पे। जब अल्लाह के नबी सल्लम ने देखा उसकी तरफ मुंह फेरा तो आपने फरमाया, तुमने एक वसी चीज़ को तंग कर दिया, यानी अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी थी तो तुमने उसको छोटा क्यों कर दिया। मुराद क्या है कि तुम अल्लाह से सब के लिए रहमत मांगो। हकीकत यह है कि रहमत के ऊपर ये कायनात खड़ी है। अगर आप मैं एक दूसरे के साथ रहमत नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी को नेकी का हुक्म नहीं देंगे। इसकी दलील सूरत बलद आयत 17, व तवासुब सब्री व तवासुब मरहमा, एक दूसरे को सब्र और एक दूसरे को रहम की तलकीन करते रहे, यानी हक़ के रास्ते में व तवासो बि सब्री व तवासो बि सब्र व तवासो बिल हक़ की व तवासो बि सब्र, हक़ के रास्ते में जब तक सब्र नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात लोगों के लिए रहमत कैसे थी कि आपने लोगों को आग से बचाने का अहतमाम किया। आप कहते हैं, लोगों तुम आग के घड़े के किनारे खड़े थे और मैं आया और तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर, पीछे से पकड़ पकड़ कर तुम्हें मैंने उस घड़े के पास से हटाया, तो क्या पता चला कि जो ज़मीन पर रहम करेंगे आसमान वाला उन पर रहम करेगा। एक शेर भी है ना, करो तुम रहम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। यह असल में एक हदीस है, अबू दाऊद की रिवायत है 4941, अब्दुल्ला बिन अमर इसके रावी हैं, कहते हैं, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, इरहमु अहलल अर्दी यरहमकुम मन फिस समाई। रहमान रहम करने वालों पर रहम करता है, ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और दूसरी बात एक नोट कीजिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, 3 सेकंड तक सोच लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। अल्लाह का सबसे बड़ा रहम क्या है? यानी आप सोच सकते हैं कि दुनिया बनाई, जन्नत बनाई, इस्लाम दिया, हमें इंसान बना दिया, सबसे बड़ा रहम क्या है जी? कैसे, कोई दलील? अर-रहमान अल्लमल कुरान। इस कायनात पे अल्लाह का सबसे बड़ा रहम ये कुरान है, और वो कुरान आपके हाथों में है। कितने खुशकिस्मत हैं आप। और अगर कुरान पढ़ के हमारे अंदर रहम ना आए, हमारे दिल सख्त हैं, हम अपने नीचे, यानी हम कह लीजिए कि अपने मुलाजमीन के साथ, खादिमाओं के साथ और मज़दूरों के साथ, और बाज़ दफ़ा तो अपने साथ काम करने वालों के साथ भी रहम नहीं करते, तो फिर सोचिए कि ये कुरान हमने क्या पढ़ लिया। आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम कितना था कि अगर नमाज़ पढ़ते और पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो आप नमाज मुख्तसिर करते। बुखारी की रिवायत है 708 किताबुल अजान, अनस इसके रावी हैं, का मा सल्लई तो वरा इमाम कत्तुन अखफ सलातन वाला अतम मिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं नबी से सल्लम से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज मैंने किसी के सामने नहीं कभी पढ़ी, कि अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि कहीं इसकी माँ परेशानी में मुबतला ना हो, नमाज को मुख्तसिर कर देते। तो आप ज़रा सा अपने ऊपर लीजिए, मेरे दिल में कितना रहम है। देखिए, अब यहाँ फिर इम्प्लीमेंटेशन चंद मिनट की बात कर लेते हैं इसके ऊपर। रहम खा कर बच्चे को नमाज के लिए ना उठाएं, रहम खा कर आप किसी का दिल ना तोड़ें और गुनाह की दावत कबूल कर लें, ये रहम नहीं है। हम मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हैं। जब तक हमारा अपना इल्म पुख्ता नहीं होता ना कुरान सुन्नत का, हमारा अपना लेवल भी सेट नहीं होता, अभी तक हम ऐसे हैं जैसे किसी गोल दायरे में जब कोई घूम रहा होता है ना, हर लम्हा दायरा क्या है, एवरी पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट, एवरी पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट। जब एक इंसान इल्म की तरफ आता है ख़ास तौर पर, तो वो दायरे पे खड़ा होता है। जैसे एक माँ थी तो कहने लगी कि बच्ची की शादी करनी है, रिश्ता नहीं आ रहा, ये है वो है, जो हालात है, और उनकी बच्ची ने नया नया कुरान शुरू किया था। मैंने उन्हें यही मिसाल दी थी, मैंने कहा थोड़ा सब्र कर ले, इस वक्त आपकी बच्ची कुरान से जुड़ी है, अभी ये एक दायरे की कैफियत में, अभी इसकी अपनी सोच को पुख्ता होने दें, क्योंकि अगर आपने इसका रिश्ता कर दिया अभी, कुछ अरसे बाद इसकी सोच बदलेगी, इसको वो रिश्ता अच्छा नहीं लगेगा। जिनसे आप करेंगे इसका रिश्ता तय, कल इसके अंदर कोई ऐसी अमली तब्दीली आ गई तो वो इसको कबूल नहीं करेंगे, और जो भी आपने करना है थोड़ा सब्र कीजिए, इसकी सोच पुख्ता होने दें। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि जब हम दीन को का कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं, अभी कच्चा पक्का है, बिलीफ में कच्चा पक्का है, बहुत सारे लोग पूरा कुरान पढ़ने के बावजूद भी अभी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है। तो अल्लाह से ये कहा करें कि अल्लाह, अब चूंकि मैं चेंज हो रही हूँ, चूंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, चूंकि मैं अपने आप को बदल रही हूँ, तो फिर आप मुझे बेहतरीन अंदाज से ढाल लें। और वही बात कि अल्लाह मुझे ऐसा बना लें कि क़यामत के दिन आप जब मुझे देखें तो आपको मेरे ऊपर प्यार आ जाए। देखिए, लोगों का प्यार लेने की हर मुमकिन कोशिश कर ही ली है ना, मिल भी गया सारी दुनिया का प्यार तो क्या मिला, सर का दर्द तो कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई तकलीफ़ आ जाए दूर तो कोई कर नहीं सकता, तो अब अल्लाह के प्यारे बनना है। अब हमने दुनिया को खुश कर दिया जितना करना था, डोंट जिसको कहना चाहिए कि अपने लिए इतना सख्त टारगेट ना लें आप, इट्स अनअचीवेबल टारगेट टू प्लीज पीपल। अपने आप को खुश करना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप आज अपने आप को खुश करें, कल आपका नफ्स आपसे इससे भी बड़ी चीज़ मांगेगा, आप उसकी वो मनपसंद करें दूसरी होगी। हज़रत आयशा कहती हैं, जो चाहे खाओ, यानी जो खाने को दिल चाहे वो खाना, ये भी इसराफ है। नहीं समझ आए? आप कहेंगे पकोड़े खाते हैं, पकोड़े बना लें, फिर आप कहेंगे साथ अब सोडा पीना है, सोडा पियेंगे, तो उसके बाद चाय पियेंगे, चाय के बाद आपको झालियाँ चाहिए होगी, एक ख्वाहिश के अंदर से दूसरी ख्वाहिश निकलती जाएगी। अब आपकी मेरी ज़िंदगी और हमारी उम्र का बाकी हिस्सा अल्लाह चाहा, क्यों परेशान होते हैं, हमने क्या दिया है अभी, हमने इस रास्ते में इल्म को दिया क्या है, हमने इस्लाम को तो अभी देना शुरू भी नहीं किया, अभी तो हम ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म मिलता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता दिल में ख्वाहिशात आती हैं, कुछ करने का शौक है। एक जगह एक दर्स था तो सिस्टर्स थी, मैंने जाते ही एक सवाल किया कि सिस्टर्स ये बताइए कि आपने सुबह से इस्लाम के लिए क्या किया, मेरा क्वेश्चन कुछ इस किस्म का था, तो पहले तो वो ज़रा सा परेशान हुई, फिर एक कहने लगी मैं उठी तो मैंने फजर तहज्जुद पढ़ी, दूसरी ने कहा दुआएं पढ़ी, तीसरी ने कहा अज़कार किए, जो कुछ किया, एक दो की बात सुन के मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा माजरत ये तो आपने अपने लिए किया। अब वो ज़रा सी टोंकी, मैंने कहा आपने नमाज़ पढ़ी, ना पढ़ेंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपने दुआएं पढ़ी आपका सिक्योरिटी लेवल है इट्स गुड, आपने ताचाश पढ़ ली तो आपके माशाल्लाह घुटने ठीक रहेंगे बिलफर्ज, तो सिस्टर्स ये तो आपने अपने लिए किया। आप कहती क्या ये कोई फ़र्क चीज़ होती है? यदि आप देखिए सोचिए ज़रा, क्या ये फ़र्क है कि अपने लिए कुछ अच्छा करना या इस्लाम के लिए? फिर मैंने उनको थोड़ा सा यही बताया कि अभी तक तो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाए, इस्लाम को क्या दिया? देखिए इस्लाम को हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है अगर हम में से हर एक बामल हो जाता है तो इस्लाम को हमारी ज़रूरत ही नहीं रहती कुछ हम उसके लिए करें, लेकिन इस्लाम के लिए कुछ करना, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, लोग मुसलमानों को बुरा कह रहे हैं, किसी को इस्लाम का रास्ता दिखा दें, किसी इंटरेस्टेड शख्स को इस्लाम की दावा दे दे, ये इस्लाम के लिए है ना, किसी जगह जाइए इस्लाम का झंडा लगा दें, किसी मुसलमान की मदद कर दें, अभी तक तुम जाती पर्सनल नेकियों में से नहीं निकल पा रहे, तो क्या आपको नहीं दिल करता कि आपको कोई जॉब दे? आप मुझे एक बात बताइए, मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, आपको अगर एक चॉइस मिले कि आपको इस शहर की एक छोटी सी फर्म, वो सामने कोई छोटा सा ऑफिस उनका हो सकता है, उधर से जॉब ऑफर होती है और वो आपको पे जितनी मर्जी दे दें, जो भी लेवल है वो उससे कम तो देंगे भी नहीं, बट वो दे आर वेरी नो अननोन लो पीपल, और वहाँ जो काम भी आप करेंगी वो कोई आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बिकॉज आपको करना है तो करना। इसके बरक्स अगर आपको एक जॉब ऑफर हो जाती है, मिसाल दे देती यूएनओ से, जिसको सभी बड़ा कहते होंगे, और इससे बड़ी क्या चीज़ है, कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लें, अरामको था एक वक्त में, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, आराम को कंपनी में आपके हस्बैंड को जॉब ऑफर होती, आप किस की जॉब ऑफर कबूल करेंगे? आपको सदर ट्रंप जो सदर है कि वजीर है? अच्छा आप क्यों हंसे हैं? मुझे आपके हंसने से बात याद आ गई, अभी हमारे आने से पहले एक माह पहले तकरीबन इमाम सिराज वहाज आए हुए थे उधर नॉर्वे में ना, तो उन्होंने कोई नाम लिया, कहते हैं आई डोंट नो वाई वेन एवर आई टेक वैकेशन, जिसने कहा मैं जब भी इसका नाम लेता हूँ लोग हंसने लग जाते, आई डोंट नो वाई, यानी आप हंसे तो मुझे उनकी बात याद आ गई कि वेर एवर आई टुक हिज नेम पीपल स्टार्ट लाफिंग एट मी। लेकिन मिसाल है कि आपको सदरे मैं यूएसए के प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ऑफर आ जाए, क्या कबूल करेंगे? कौन सी जॉब? फिर उसमें मनी भी देखेंगे कि ज्यादा है ये वो छोटा सा ऑफिस वाला आपको दे रहा है जो बड़ा, किसकी लेंगे गुलामी, किसकी जॉब लेंगे जी आप? जी यूएन की लेंगी ना, आप किसकी लेंगी? चले आपके हस्बैंड लेंगे, आपने तो लेनी भी नहीं, आपके हस्बैंड आपको रिश्ता आ जाता है बच्ची के लिए कि वो यूएनओ में काम करता है, और दूसरा ये कि वो आपके सामने रिपेयर शॉप में काम करता है लड़का, कौन सा लड़का अच्छा होगा जॉब किस भर से? नहीं छोड़े इस वक्त आप गलत बातें कर रही, हम देखे सॉरी इतना ऊंची नहीं हंसते, आहिस्ता हंसे, देखिए आप इल्म की महफिल में बैठे हम आपसे नहीं बोलते ऐसे नहीं सोचेंगे आप, देखिए फितरी बात है बड़ी जॉब बड़ा का बड़ा नाम, आप अगर दीन से भी कहते हैं तो अगर आपका बेटा जो है वो उम्मुल कुरा में पढ़ाता हो इमामत करे या रॉजवेल की मस्जिद में हो, आप कौन सी इमामत को पसंद करेंगे? मैं सऊदी अरब की किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लेंगे ना। देखिए अब यहाँ समझिए कि छोटे की जॉब के पैसे कितने क्यों ना मिल जाएं लेकिन स्टेटस नहीं होता, और बड़ी कंपनी में नाम होता है। अब आप सोचिए सारी चीज़ों को सुनकर जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त, कि आपको एक ऑफर मिलती है कि आप किसी बड़े की मुलाजमत इख्तियार कर लें किसी छोटे की छोड़कर, तो किसकी लेंगे आप? ये कहेंगे नहीं हम छोटे की कर ही रहे हैं बहुत सारे, बस ये कह लीजिए ये सफ़र आपको ये सिखाता है। मैं एक सुन रही थी छोटा सा क्लिप था, किसी दिन शायद आपको भी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी, कि किसी ने कहा कि आपने अपने इस प्रोफेशन या इस्लाम के लिए या जो वो एक मुबल्लिग हैं बहुत अच्छे, अल्लाह जन्नत दे चले गए दुनिया से, तो वो अपने बारे में सुना रहे थे कि लोग कहते हैं कि एक दफ़ा कुछ छोड़ना पड़ता है, एक दफ़ा हिजरत करनी पड़ती है, ये तो कदम कदम हिजरतों का सफ़र है, ये तो कदम कदम कुर्बानियों का सफ़र है। उन्होंने कहा कि पहले मैंने इसके लिए अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ा, मुझे लगता था मैं ठीक नहीं हूँ उसके लिए नहीं हूँ, आपको पता है डॉक्टर इसरार साहब की बात कर रही हूँ मैं, ही इज़ बाय प्रोफेशन अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन जब उनका पढ़ना पढ़ाना शुरू हुआ तो उनको फील हुआ कि डॉक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन रूहानी डॉक्टर बनना है, ही इज़ वन एग्जाम्पल. उनका ये क्लिप मैंने देखा था चंद दिन पहले, कहीं देखा है. उन्होंने कहा लोग सोचते हैं कि आपने अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ा है, फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ इवेंट्स गिनवाए कि मैंने क्या क्या हिजरतें की हैं सिर्फ अपने इस काम पढ़ने पढ़ाने के लिए. फिर तौफीक चौधरी, नाम सुना है आपने उनका, ही इज़ फ्रॉम बंगाल, बंगाली हैं और ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत कामयाब स्पीकर हैं. आई लाइक हिम रियली, ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल. कभी आपको सुनने का मौका मिले इंग्लिश में तो ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल. वो अपना सुनाते हैं कि शायद ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर किड्स, देयर पेरेंट्स, और वो सब इन गरीब थे पेरेंट्स, जिसको पाकिस्तान में हम कहते हैं ना आना आना जोड़ के बच्चों को पढ़ाना. कहते हैं मेरा बाप मेरी माँ नज़रें लगाए बैठे हुए थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, और कब ये सारा रिटर्न वापस आए जो मेरे पे उन्होंने पढ़ाई पे लगाया है. उन्हीं दिनों में इनको किसी तरफ से कुछ कोई ऐसा रिलीजियस लीडर मिला जो उसको सुनने लगे, करने कराने लगे. किस्सा मुख्तसर, वो रो पड़े. ये मैंने उनका लाइव सुना हुआ है. ये बर्मिंगम में शायद आए थे, यूके में थे हम उन दिनों में, तो वहाँ उन्होंने ये अपनी स्टोरी सुना. ही वॉज जस्ट क्राइंग. कहते हैं कि मैं अपना जिस बात पे क़यामत के दिन अपने आप को महसूस करूँ कि द सबसे बड़ा गम और तकलीफ़ जो मैंने अपने पेरेंट्स को दी है, तो वो दिन था जिसे मैंने अपने बाप को माँ को कहा कि आई एम डिसकंटिन्यूइंग मेडिकल पर लाइफ. जो भी अभी चल रहा था, अभी उनका शुरू ही था स्टेट, यानी पढ़ चुके थे, अभी जॉब नहीं की या कुछ भी. तो कहते हैं कि मैंने उसके बाद सो इरादा किया कि अब ये छोड़ के मैं सऊदी अरब पढ़ने जा रहा हूँ. मुझे पता है मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया था. मैं अगर अपने दिल पर दुख महसूस करूँ तो मैं ना देता जी उनको, लेकिन मुझे फील हुआ कि ये मेरा काम नहीं है, मैं कुछ और करने के लिए आया हूँ. फिर इसी तरह डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब का नाम आपने सुना होगा. कितने कामयाब किस्म के वो आप देखिए अपने दौर के शख्स थे, कारोबारी सब थे, लेकिन सब ने जब इल्म आ जाता है ना, देन यू हैव योर विजन विल बी वेरी ब्राइट. अंधेरे में तो सांप और रस्सी का फ़र्क नहीं पता चलता, वो करने दीजिए सबको. अब इस वक्त इस लहज पे अगर आप, मैं आपके ऊपर बात करती हूँ, सीधी बात करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग माशाल्लाह एक कोर्स करके आ गए, अब अगला कोर्स आ रहा है. इज़ इट पॉसिबल 100% कि आपके लिए ज़रूरत हो, आपके मुताबिक टेलर मेड कोर्स हो? कोर्स तो नहीं होते ना, फिर वो सबके साथ तो नहीं आप चलेंगे, वो तो ट्यूटरिंग होती है. आप अपनी मर्ज़ी से ट्यूटर को हायर करें, टाइम दें, पैसे लें, करें, लेकिन जहाँ भी इज्तमाहियत होगी, फ़्लाइट का टाइम क्या 100% लोगों को सूट करता है? हमारी फ़जर, हमने सिर्फ इसलिए एक फ़्लाइट छोड़ी है कि वो एग्जैक्ट फजर की नमाज़ के वक्त पे थी, और ठीक उससे 40 मिनट बाद अली ले ली है. हालांकि वो कन्वीनियंट थी, वो सस्ती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जहाज़ में जा रहे होंगे और उसी वक्त तो टाइम शुरू होगा, पहले नहीं पढ़ेंगे. आप ये क्यों ले ली कि जहाज़ में जाने से पहले पढ़ के फिर बैठेंगे, फिर जो होगा देखी जाएगी. कन्वीनियंस ही मिशन नहीं होती. ये सोचिए अब इस वक्त आपका मेरा लेवल जो है, वट कैन ए ली फॉर इस्लाम. देखिए छोड़ता कुछ नहीं है, ये मेरे से लिख ले, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए. आप दीन के लिए कोई चीज़ अगर वक्ती तौर पे पीछे भी डालते हैं ना, वो कोई भी हो सकती है. हम सभी जानते हैं सबसे पहले तो आराम, नींद, सेहत, बच्चे, घर, जॉब, कुछ भी, ये अल्लाह रखेगा नहीं. अल्लाह बहुत ज़ीरो लगा के वापस करता है आपको. अगर इसको किसी एंगल में भी ले लें, ये सिर्फ एक साइड की बात आ गई है कि ये आप और मैं जो पढ़ने बैठे हुए हैं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपको मुझे अपने ऊपर रहम आ रहा है या हम दुखी हो गए? शुक्र करें कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे ये मौका तो दिया, अल्लाह ने मुझसे ये कुर्बानी मांगी. हम देंगे अपने घर अल्लाह के रास्ते में, हम देंगे अब्दुलरहमान बिन औफ की तरह. कल पढ़ा के गई और उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम जो बात मैंने 20 के ऊपर बोली, वो मैं जुमले बोल ही नहीं सकी आपके साथ. बाद में ख्याल आया क्योंकि वो दिमाग में खड़ी थी कि जब हिजरत करके जा रहे थे हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ, मैं आप ये तो पढ़ चुके ना, अमीर तरीन लोगों में से थे, और जब निकल रहे थे वहाँ से तो बीवी, बच्चा और कुछ जमा माल था, ये तीन चीज़ें थी इनके पास कि चले जा रहे हैं दूसरे शहर में, काम आ देंगे. थोड़ी सी अगर आगे गए, ससुराल वाले आ गए, कहने लगे किधर जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूँ. कहने लगे ये लड़की वापस करो, हमने अपनी बेटी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि तुम इसको दर दर लेके फिरो. ससुराल वालों ने इनकी बीवी, और जो उनकी बेटी होगी उसका मुतालबा किया, ज़बरदस्ती इनकी बीवी ले ली. कहा ठीक है आपकी खुशी, ले लीजिए. अभी चंद कदम आगे गए तो अपने ही माँ बाप आ गए. कहने लगे ये बच्चा, ये हमारी नस्ल है, इनका बेटा, वो अपनी नस्ल समझ कर कहने लगे ये बच्चा हमारा पोता है, वापस करके जाओ. वो बच्चा भी दे दिया. हमें तो नहीं ये समझ आएंगी बातें, सॉरी आप तो केस कर देंगे, इतनी संग दिली. इतना दिल खाली और इतने ठंडे और इतने इनके खून सफ़ेद हो गए। ये नहीं है, ये आजमाइश होती है कि अल्लाह के लिए दे क्या सकते हैं। वो भी दे दिया, फिर निकले और जब पलट आए तो देखा सामने अपने भाई खड़े हैं। कहने लगे, ये माल मिल के कमाया है, साझा था, हमारी शराकत है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो। मुराद उनका पैसा नहीं था, वो कहते थे रोकना इसको। ससुराल देखे ना, जो बीवी को ले गए इनकी, क्या वो अपनी बेटी को घर बिठाना चाहते थे? ये पीयर प्रेशर होता है, नहीं तुम्हें ऐसा करना है, ये करना है। और वो पोता लेके उन्होंने क्या करना था, मुराद ये था कि वैसे नहीं रुक रहा तो ये बच्चा देकर रुक जाएगा, हम तो रुक जाते हैं। और वो माल का टोकरा जो भी पोटली थी भाइयों को दी। वल्लाही जब नबी सल्लम के पास पहुंचे तो कहा, अल्लाह के नबी, ये तन की कमीज, सिर्फ तन के कपड़े बदल के आयो, सिर्फ ये लेकर आयो, और भी एक सहाबी है उनके जिस्म पे तो कपड़े भी नहीं थे। अल्लाह के नबी अपनी जगह से उठते हैं और गले लगाते हैं और कहते हैं, कद्र बेहल भई, कद्र बेहल भई, बेशक तेरी ये तिजारत तुझे फ़ायदा देगी, यानी तूने नफ़े का सौदा किया। और वही फिर आगे जो कहानी सुनी कि मवाखाते मदीना हुई और भाई ने आधी जायदाद पेश कर दी। कहते, शुक्र है देखा, उधर छोड़ा था इधर मिल गया। का नहीं दल्लू नीला सोके, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, और पनीर और घी का काम किया। और एक दिन गुजरा कि कुछ जब वक्त गुजर गया तो अल्लाह के नबी को मिले। कहा, सुनाओ अब्दुलरहमान, क्या हाल है? ठीक है। इस जगह अरब लोग कुछ पीला सा ज़ाफ़रानी रंग खुशबू वाला लगाते थे, जो इस बात की निशानी थी कि न्यूली वेड है, हर कल्चर में कुछ होता है। अल्लाह के नबी ने पीला रंग देखा इनके जिस कपड़े पे, कहा कि अब्दुलरहमान क्या हुआ? कहा, अल्लाह के नबी शादी कर ली। अच्छा, हम होते, अच्छा हमें बुलाया ही नहीं, बताया ही नहीं, हमारे बगैर, हाँ जी अब ऐसे ही होना है, खून सफ़ेद हो गया, दीन जो पढ़ने लग गए, कुरान पढ़ने लग गए। आप खुश हुए? आपने कहा, अउलिम बिशातिन, वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक बकरी का करना। तो आप देखिए, ये वेव लेंथ हमें समझ आती है। ये कोई छोटे लोग थे, और आपने अभी सुना है ना, ये सारा हिस्सा उसमें बल्कि डाल दें जो एडिटिंग में, ये अब्दुलरहमान बिन औफी के टॉपिक में डल जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या अब्दुलरहमान ने सब कुछ हिजरत मदीना के मौके पे दिया तो कंगाल होके मरे? उनके विरसे की इतनी लंबी डिटेल्स आपने किसी सहाबी के विरसे की नहीं पढ़ी, जो कल आपको इनकी सुना दी मैंने, जो इनका विरसा है वो देखिए कितना बड़ा है। तो याद रखिए, आप और मैं भी नहीं किसी का रखते, अपनी हैसियत से बंदा ज़रूर कुछ दे देता है, लेकिन क्या अल्लाह रखेगा? अल्लाह नहीं रखता। सिर्फ करना क्या है आपको मुझे, इसके ऊपर अल्लाह से सौदा करके खुशियाँ मनाएं। फस्तबशिरु बिबैकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही, सूरत तौबा में अल्लाह आपको कहता है, शायद आयत 100 है या 130 है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना। तो आपका अपने ऊपर सबसे बड़ा रहम, देखिए अब ये रहम पे इतनी बात हो गई है, आप वल्लाही इस पे मेरी बात ना मानी है, डोंट लिसन टू मी, आप अपने एडमिन्स की भी बात ना माने, आपके जो इधर कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी भी ना माने, आप अपने दिल को रख कर पूछें कि आपका इस वक्त अपने ऊपर सबसे बड़ा रहम क्या है, कि आप अपनी ज़िंदगी को, आप इस दीन को सीखने के बाद इसको मज़ीद से स्पेशलाइज कीजिए। इसी में एक वक्त आएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। कौन सा फील्ड है ज़िंदगी का जो इस्लाम से हटा हुए, मेरा क्वेश्चन है आपसे। मिसाल है, आप में क्योंकि डॉक्टर है, मेरा गुमान तो नहीं कि इस वक्त कोई डॉक्टर इधर हो सकता है वीकेंड क्लासेस में हो, बिलफर्ज आप डॉक्टर हैं, तो क्या आप हैं जी? आप सर्विस प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे ना आजकल के, करते हैं छोड़ी हुई है या जो भी है? क्वेश्चन ये है, क्या मेडिकल प्रोफेशन में रह कर अच्छे काम नहीं हम कर सकते? बस अच्छे काम करना सीख लें, ये मेडिकल प्रोफेशन आपकी जन्नत का रास्ता बन जाएगा। मैंने सुनाई थी दरसों में, आपने सुनी होगी, एक बच्चे से मैंने सफ़र में पूछा था, बेटा आप क्या बनना चाहते हो? तो आधा डॉक्टर आधा इमाम। मैंने कहा, चलो ये नस्ल आधे तक तो आ गई है, अगली पूरे पे आ जाएगी। तो मैंने कहा, नहीं बेटा आप अपना पूरा भी डॉक्टर बन सकते हो, पूरे इमाम भी, हाउ इज़ इट पॉसिबल? उनको तो ये समझ नहीं आती ना। फिर मैंने उसको बताया जो आप सुन चुके होंगे, तो यकीन कीजिए पूरे बन के देखें, ये आपका अपने ऊपर सबसे बड़ा रहम। वल्लाह ही इस वक्त मैं यहाँ आकर अगर बैठी हूँ ना, कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, बड़ा शुक्रिया बहुत, मुझे तो गुस्सा नहीं लग जाता समटाइम किसी की, ज़्यादा ही मतलब इस बात पे कि बहुत ही मेहरबानी है ये वो, मैं कहती आपको क्या पता कि कितना बड़ा रहम मेरा मुझ पर है कि मुझे अल्लाह ने इस चीज़ पे रखा है। तो हमेशा इस पे याद रखिए, और आपकी मर्ज़ी है आप जन्नत के पहले दर्जे में जाना चाहते हैं या आप 100वें पे। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक फील्ड ले ली आप, उसके बाद स्पेशलाइज करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। लाइक राह हाफिद्दीन। और एक सवाल कीजिए, जो जो काम आप कर रहे हैं वो आपके अलावा हो सकते हैं कि नहीं? कोई और कर सकता है? और कर सकता है ना, तो आप वो कीजिए जो कोई और नहीं अब कर सकता। कल भी हम परसों बात कर रहे थे ना वहाँ, कि ये नया जो कोर्स आ रहा है एडवांस, ये आपके लिए ही, किसी और के लिए नहीं है। कोई आ जाए शहर में, मोस्ट वेलकम, जो आप ही तरह से कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं अभी कच्चा पक्का, आ जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आपके लिए, ये कोर्स तो आपके लिए, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो करने लगे कितने? आज अगर सिर्फ हम मुस्लिम इस चीज़ पे गौर कर लें, तो मेरा यकीन है इस बात पे कि उम्मत मुस्लिमा में खैर आएगी, बिल्कुल आने वाली है। मैं ऐसी लोगों को जानती हूँ, यकीन करें, कि अपने काम की जगह किसी और को रखा, पैसे उसको देने लग गए। यानी क्या क्या काम है ये, तो अब आप और मैं छोड़ ही देना कि इस रास्ते में आपका मेरा क्या है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने ऊपर रहम करने वाला बना दे, जितना रहम करेंगे उतना रहम मिलेगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अल्लाह के वादे सच्चे। मैं तो दोनों हाथ खड़े करके आपको कह सकती हूँ कि मन अहसन मिन अल्लाह कीला व मन अहसन मिन अल्लाह हदीसा। अल्लाह से सच्ची बात किसी की नहीं, अल्लाह से सच्ची अच्छा काम किसी का नहीं। करना क्या है कि आपने सिर्फ अपने मन को मारना है, बाकी आपके बगैर ये भी हो जाएगा। आखिरी बात कह दूँ कड़वी सी, आप नहीं भी होंगे तो ये भी हो जाएगा जिसकी आपको दावत दी जा रही है, पर आप नहीं होंगे। और इस ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। मुझे याद है एक न्यूली वेड बच्ची जिसकी शादी हुई, शादी मेडिकल कर चुकी थी, फिर उसके बाद जो शुरू में क्या 3 साल हाउस जॉब कुछ भी, फिर उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेप पे जो करते हैं रेजिडेंसी, एक जिसमें उसको दूसरे शहर में जाके रहना पड़ा। ये यूरोप की बात है, यहाँ की भी नहीं, पाकिस्तान की भी नहीं है। यकीन कीजिए कि शादी के बाद वो लड़की उससे हटके कोई 2-4 घंटे दूर के किसी छोटे से, उन्होंने उसको गांव कह लीजिए, उसमें भेजा कि आपकी रेजिडेंसी में आपको दूसरी ही जगह भेजना है। ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी जगहों पे भेजते हैं। और वो रही, ससुराल ने कुछ नहीं कहा, मियाँ साहब ने कुछ नहीं कहा। वरना हमारे यहाँ तो न्यूली वेड तो बड़ी बेचारी अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, चलती कैसे है, बोलती कैसे है, उठती कैसे, तो दुनिया के लिए तो लोग सारा कुछ कबूल करते हैं। तो अगर कोई आपको कहे ना कि अब आप कहाँ चल दी, तो क्या अब तो असल जॉब मिलने के दिन आने वाले हैं, अब तो प्रैक्टिस चलनी, इसके बाद तो फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। और ये हमेशा नहीं रहता वक्त, ये थोड़ा सा वक्त होता है कुर्बानियों का, उसके बाद सिले शुरू हो जाते हैं। कोई सवाल है? उस दिन भी मैंने यही कहा था कि जिस आप बाय डिफ़ॉल्ट सब इस कोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप में से कोई नहीं करेगा या नहीं करना चाहता या क्वेश्चन कंसर्न्स है, वो सामने आए। और किसके सामने आए? मेरे पास आए। नहीं, बिलीव मी, आपका हक है। मेरा ख्याल है अभी अतीक ने आपसे डिसाइड किया नहीं, ये 3 दिन है अभी हमारे पास इस वीक के, आप लोगों के साथ पर्सनल वन ऑन वन बेस पे रखा। आप में से मैं आपको हक देती हूँ, ये अभी मेरी उनसे भी नहीं बात हुई, आप में जिसका कोई क्वेश्चन या कंसर्न है नूरुल्लाह नूर के बारे में, तो इस क्लास के बाद मैं अपने ऑफिस में आ जाऊँगी, आप लोग इनको बता के मन में बना जाइए। वैसे हर एक से करना ही करना है हमने अलग से, लेकिन पहले वो लोग आए जिनका कोई इशू है। और रियली आइए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको डांटूंगी या मना करूंगी या कुछ नहीं। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो नहीं आने वाला वो मुझे ज़रूर बताया करे, छुट्टी स्कूल में भी ना आना हो ना। वो कल मैं नॉर्वे की क्लास ले रही थी, तो वहाँ हमारी एक सिस्टर है बेचारी, बड़ी भोली, बड़ी प्यारी सी है, तो वो वाहद ऐसी स्टूडेंट है कि जिन्होंने ना आना होना तो वो बड़े इतपाक से छुट्टी करने का मुझे बता देती हैं, वो ग्रुप में जिसमें मैं हूँ। तो मैं इनशाला उनके साथ 2-3 मिनट बात करके कहती हूँ, वो आ जाती हैं कभी कुछ कभी कुछ, तो वो हंसती कह रही है सदा मैंने छुट्टी करना ही छोड़ दिया है, मुझे बताया आपको मैंने कहना है, आपने मुझे आगे से कायल कर लेना, मैंने आ जाना है। तो मैं कहती नहीं हूँ, तो आप मेरे पास आइए, सबको दावत है, जिसको आना है बारी बारी, आप जो जल्दी में पहले आ जाएं, लेकिन मेरे से बात करें। ये 2 ही दिन है बीच में, क्योंकि फिर तो माशाल्लाह आप फारिग हो रहे हैं, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ आपके लिए, लेकिन ये बीच में बात आ गई तो मैंने कर दी। ठीक है, अब चलते हैं, आप अभी कोई सवाल है तो लिख लें क्लास के बाद, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आगे चलें। क्या टॉपिक है? अफ़ो दरगुज़र, ये कोई अलग चीज़ होती है, आइए इसको देखते हैं। देखिए लफ्ज़ अफ़, और ये जो कल सवाल किया था दरगुज़र किसका, नहीं वो बुर्दबारी थी। अफ़ का लफ्ज़ क्या है कुरान में? है यसलूनका माज़ा युन्फिकून कुलिल अफ़। कुरान में लफ्ज़ है अफ़, ये आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, कहा ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ कर दो, अफ है ज़रूरत से ज़्यादा। और हदीस में दाढ़ी के लिए लफ्ज़ आया, आपको पता है क्या? उर्दू में अगर बता दो لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو. قرآن حدیث میں آتا ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو, اف کے لفظ ہیں کہ درگزر کرو. کیا مطلب؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. بات سمجھ گئے؟ اب یہاں دیکھیے اف و درگزر کیا ہے. اف کیا ہے؟ درگزر, دونوں ایک ہی لفظ ہے. عربی زبان میں مختلف الفاظ آتے ہیں. صفح کا لفظ آتا ہے, وصفخ صفحن جمیلا. سورہ ہجر میں ہونا چاہیے, چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ درگزر کیجئے, درگزر کرنا اچھا. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے سفر, یہ صفحے کو پلٹتے ہیں نا. اب یہ صفحہ اوپر تھا تو میں نے اس کو پلٹ کے اگلا صفحہ کھول لیا تو یہ چلا گیا, یہ ہے صف. درگزر کیا؟ جانے دو. اس کا اردو میں ترجمہ لکھ لیجئے, جانے دو. جو ہو گیا سو ہو گیا, مٹی پاؤ. اللہ ما قد سلف, گھڑے مردے نہ اکھیڑو. زندگی میں اگر یہ اصول نہیں اپنائیں گے تو آپ خوش نہیں رہیں گے. ہر وقت انسانوں کی اس دنیا میں کہیں نہ کہیں کلوژن اور ٹکراؤ ہوتے ہیں, بلیو می ہوتے ہیں. آپ گاڑی چلا کر آتے ہیں یا آپ کو کوئی چھوڑنے آتا ہے, 10 دفعہ تو ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہوگی, لیکن وہ گاڑی بچا لیتے کبھی دوسرا. زندگی کے سفر میں انسانوں کے بیچ میں آپ اور میں جیتے ہیں. پہلی بات ہے, ہم لوگوں کی ضرورت ہیں اور لوگ ہماری ضرورت ہیں. اگر کوئی کسان کہے کہ میں نے اپنا بیج جو زمین میں ڈالا ہے, اس کو ڈالنے سے لے کر کھانے تک میں کسی اور سے مدد نہ لوں, تو وہ خود ہی بیج ڈالے گا, خود ہی کاٹے گا اور خود ہی کھائے گا. ادروائز اس کو بیج ڈالنے سے لے کے پانی دینے میں, کاٹنے میں, پھر اس کو مارکیٹ میں لے جا کر ایک دکان پہ بکنے میں, آپ اور میں جو آٹا کھاتے ہیں کتنے ہاتھوں سے گزر کر آتا ہے. انسانوں کی اس دنیا میں ہمیں ضرورت ہے لوگوں کی, پہلی بات. دیکھیں ایک بیسک رول سمجھیے, یہ اجتماعی زندگی کا بھی ایک نسخہ ہے جو آج کل آپ کو ہر دن ہی کوئی نہ کوئی ٹپ مل رہی ہے. اجتماعی زندگی کا اصول ہے کہ ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑے گی, نمبر ایک. دوسری کیا ہے کہ سب ہماری طرح نہیں ہوں گے. آپ کا میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ, اور خاص طور پہ شوہر اللہ کا بندہ, وہ 100% میرے جیسا ہو. تو ایک اور عورت ہو گئی. آپ بھی نازک, وہ بھی نازک. آپ بھی ڈرپوک, وہ بھی ڈرپوک. آپ بھی اپنی کمر ماپ رہے ہیں, وہ بھی اپنی کمر ماپ رہے ہیں. کیسے زندگی گزرے گی؟ نہیں چلتی. زندگی میں ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اور ضرورت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مختلف صلاحیتیں دی. مثلا آپ دیکھ لیجئے, یہ بلڈنگ ہے, اس میں شیشہ بھی ہے, روف بھی ہے, کھڑکیاں بھی ہیں, کارپٹ بھی ہیں, کرسیاں میز بھی رکھیں, یہ سب ضرورت کے تحت ہے. تو کیا کرسیاں میز سے ملتی ہیں؟ آپ کہیں کرسی نیچی میز اونچا, کتنا ڈسکریمینیشن, کتنا ظلم. اور سو میز کہے کہ کرسی کے اوپر تو سیٹ لگی ہوئی ہے فارم کی اور میرا سخت مجبوری. کریں دونوں کو برابر, ٹیبل پہ رکھ دیں فارم تو جھولے گا, کر دیں اس کو میں کرسی سے کرسی اس کے برابر کر دیں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو اب جب یہ دنیا کے اندر, اور ہمارا اپنا جسم, آنکھیں, کان, ہاتھ, سب مختلف کام کر رہے ہیں نا, یہ ضرورت ہے. اب جب ضرورتاً آپ اور میں سب مل کر کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ٹکرے گا. میں اکثر ساتھیوں سے کہتی ہوں جن چیزوں کو مسائل کہتے ہیں نا, میں اس کو کام کہتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کام ہو رہا ہے, تبھی تو مسائل ہیں, تبھی تو گلے شکوے آ جاتے ہیں, کبھی تبھی تو پھر یہ ساری مسئلے ہیں. آپ سکول بند کر کے گھر چلے جائیں, کوئی ایشو ہی نہیں. کوئی آپ کے گروپ میں میسج نہیں آ رہا, کام ہی نہیں ہو رہا. کوئی سوال نہیں آ رہا, کوئی جواب نہیں آ رہا, کوئی فیڈ بیک نہیں آ رہا, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں آ رہا, کوئی پلانر نہیں آ رہا, کام ہی نہیں ہو رہا. جس دن کام کریں گے کھٹ 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 پٹ ہوگی. سارا کچن سمٹا رہا ہے, صاف کر دیے, پکا ہی نہ کھانا تو صاف رہے گا. جہاں کام ہوگا وہاں عفو درگزر کی نوبت آئے گی. میں اس کو انگلش میں ایک بڑا سا کوڈ دے دیتی ہوں, فارگیو فارگیٹ. فارگیو فارگیٹ, دس از دا بیوٹی آف لائف. اور مل کر کام کرنے میں سنہری اصول یہ ہے کہ لوگوں کی خطاؤں کو جانے دیجئے, خوش ہوں, خوش ہوں. جو یہ کرتا ہے یہ میں نہیں کر سکتی, جتنا بوجھ یہ اٹھا سکتی ہے میں نہیں اٹھاتی, یا جتنا عقلی فیصلہ یہ کر سکتی ہے میں نہیں کر پاتی, میری سمجھ اتنی نہیں. کوئی جسمانی کام زیادہ کرتا ہے, کوئی عقلی کام زیادہ کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ آپ کو کل پڑھایا نا عبد الرحمن بن عوف, کسی ایک صحابی پہ بھی نہیں یہ بتایا جو کل میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. اصحاب رائے, राय की स्ट्रांग थी, यानी इनकी अप्रोच बड़ी दूर की थी। नबी सल्लम इनकी बात सुन के चुप करके गौर लगात करते थे। तो क्या अब ये बाकी साहबा की नाउज़ुबिल्लाह डिस्क्रिमिनेशन है? अल्लाह ने दी ऐसे, मैं अपने ऊपर लेके कहती हूँ, मेरे पास अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 10 लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि मैं काम छोड़ के उनकी बात सुनूंगी ज़रूर, और 90 ऐसे होंगे मैं कहूँगी खैर है ये बाद में भी सुन लेंगे, है ना? हम सब ऐसे हैं। तो अफ़ो दरगुज़र कीजिए, घर नहीं चलते अफ़ो दरगुज़र के बग़ैर, इदारे नहीं चलते अफ़ो दरगुज़र के बग़ैर, मुल्क नहीं चलते। ये जो आपके मेरे मुल्क में सियासी निज़ाम है ना, हिजब इख्तलाफ और हिजब इक्तदार का, उधर भी अफ़ो दरगुज़र चाहिए। मौका तो दो किसी को काम करने का, आप पहले दिन उस पर तनकीद शुरू हो गए हैं, और अगर कोई वाकई 5 साल से कुछ नहीं कर रहा तो फिर आप उस पे ऊपर बात भी कर सकते हैं, है ना? तो अफ़ो दरगुज़र इज़ द की पॉइंट ऑफ सक्सेस, और इसको आप देखिए अल्लाह ने कहाँ पेश किया है कुरान में, सूरत आल इमरान 133-134, पूरी तवील आयत के अंदर, वसारी इला मग़फ़िरत में रब्बिकुम, और दौड़ लगा दो अपने रब की बख्शिश की तरफ, व जन्नत अर्दुहस समावातु वल अर्द, अर्दुहस समावातु वल अर्दु, उस जन्नत की तरफ जिसकी कीमत या जिसकी चौड़ाई, जिसका अरस ज़मीन व आसमान जितना है, उहिद्दत लिल मुत्तकीन। यानी अल्लाह ताला कहते हैं वाकई दौड़ना चाहते हो जन्नत की तरफ, तो फिर उस लिस्ट में लग जाओ, उस लाइन में खड़े हो जाओ जिसमें लोग भागकर सबीलुल जन्ना पे चल पड़े, रास्ता जन्नत का है ना। कौन होंगे अल्लज़ीना युन्फिकून फिस्सर्राय वद्दर्रा, तंग हाली में भी खुशहाली में भी खर्च करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं नहीं खुशहाली में तो करेंगे, तंग हाली में नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने पहले सर्रा और दर्रा लिख दिया। वल काज़िमीन अलगैज़, गुस्से पे काबू, वला आफ़ीना निन्नास, ये है आपका जुमला। आफ़ीन का लफ्ज़ वही है जिसको अफ़ कहते हैं, आइन फ़ा बौ, आफ़ीना निन्नास, लोगों को माफ़ करने वाले, और वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनों से मोहब्बत करता है। क्या पता चला, अफ़ो दरगुज़र को अल्लाह ने जन्नत की तरफ जाने के लिए लाजमी कर दिया, और हुक्म भी है इसका, किधर है? सूरत अल-अराफ़ 199, खुज़िल अफ़, इतना ही रोक लूँ ना तो बात पूरी है। अफ को इख्तियार करो, खुज़ अमर है, इंटरोगेटिव है, हुक्म है, करो अफ को पकड़ो, वामुर बिलोरफी वारिद अनिल जाहिलीन, अफ इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। तो क्या पता चला कि अफ व दरगुजर को अपनाना फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने इस पर हुक्म दिया है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला कह रहे हैं, सूरत शूरा आयत 43, वली मन सबर व गफरा इन नज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर, अलबत्ता जिसने सबर किया और मुआफ़ किया तो वो बेशक बड़े, तो ये बेशक बड़े अज़्म वाले कामों में से है। यानी इट्स अ बिग थिंग, आसान नहीं है दूसरे को माफ़ करना। फिर सूरत नूर 22, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून यग़फिर अल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, और इन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, और बख्श अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला। आपको पता ये कहाँ आई आयत? हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिस्तो नाम के सहाबी को स्पॉन्सर करते थे, किफ़ालत करते थे, जब पता चला कि बेटी पे बातें करने में ये आगे था, कहा आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो क्या कहा? अल्लाह ने फौरन आयतें उतार दी, अला तुहिब्बू ना, और इस आयत को सुनकर क्या हुआ होगा अबू बकर का हाल? ना सिर्फ यह कि उनको देना शुरू कर दिया बल्कि पहले से भी बढ़ा दिया। तो ज़रूरत है कि हम भी कहें कि अल्लाह अना या नाहनु तो हैब्बू ना या यो हैब्बू ना नाहनु, अल्लाह हम पसंद करते हैं कि आप हमें भी माफ़ कर दें। तो जितना आप अल्लाह से बख्शिश चाहते हैं ना, उतना आपको लोगों को माफ़ करना है। और एक आयत कोई दुआ के अंदर इसका हवाला है, खुश हो जाएंगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तो हैब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ताक रात और लैलतुल कदर मिल गई। तो ये तीन लफ्ज़ इसमें इसी नाम की तकरार है। पहली बात देखिए, अल्लाह का नाम भी अलफ, अल्लाह का नाम अलफ, आप असमाल हुस्ना में सुन सकते हैं इसकी डिटेल्स। अल्लाह माफ़ करने वाले, फिर अल्लाह पसंद करते हैं माफ़ी को, तो क्या आप नहीं करेंगे? तो आप भी माफ़ कर दें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत शूरा 37 नंबर, वल्लज़ीन यजतनिबून कबाइर अलिस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा गदिबू हुम यग़फिरून। जो लोग बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से परहेज़ करते हैं और जब भी गज़बनाक होते हैं तो माफ़ कर देते हैं, तो माफ़ करना सीखिए। दूसरे को माफ़ करके असल में आप ख़ुद को माफ़ करते हैं। पता है आपको ये बात, वज़न ले लेकर फिरते, बोझ होता है कंधों पे, दिल पे बोझ, दिमाग पे बोझ। कभी किसी के साथ अनबन हुई हो बताएं आपको ज़हनी सुकून होता है? अगर नाराज़ हैं दो घर में लोग तो एक अगर मुंह फेर के सो रहा है तो दूसरे को चैन कहाँ पड़ता है? ये अलग बात है कि हम सोचें मुझे कोई केयर नहीं, लेकिन ज़रा सा कोई मुंह फेर के तो बैठे तो फिर देखिए आपकी जान पे बनती है। माँ थोड़ी देर बच्चे से ज़रा चुप रहे, देखिए वो कैसे सीधा होता है। हम बोल बोल के अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। करना क्या है? अफ़ करना है। और हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, यानी इब्ने ज़ुबैर कहते हैं कि खुज़िल अफ़ क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों के अखलाक के बारे में दरगुजर कीजिए। लोग आपसे बदतमीज़ी करेंगे, ये पक्की बात है। कोई कुछ ना कोई गाड़ी आके पीछे से लगा ही देगा, ओवर स्पीडिंग होगी, आपको एकदम हैंड ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। ये ज़िंदगी का मैदान है, हर चीज़ आपकी मेरी मर्ज़ी से नहीं होगी। और एक हदीस सुनकर तो आपका दिल चाहेगा कि आप ज़रूर दूसरों को माफ़ करें और दरगुजर करें। मुस्लिम की रिवायत है 6544, फरमाया तुफ़त्तख अबवाबुल जन्नत यौमल इस्नैन व यौमल खमीस। जन्नत के दरवाज़े पीर और जुमेरात के रोज़ खोले जाते हैं, फिर हर उस बंदे की मग़फ़रत कर दी जाती है जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता, सिवाय इस शख्स के जो अपने भाई से कीना रखता है। फिर कहा जाता है इन दोनों को देखते रहो यहाँ तक के बाहम राज़ी हो जाएं, इन दोनों को देखते रहो यहाँ तक के राज़ी हो जाएं, इन दोनों को देखते रहो हद तक ये राज़ी हो जाएं। अनज़िरुहा ज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, यानी वो दो लोग अगर दिल में कीना रखे बैठे हैं, नाराज़ हैं, बोल नहीं रहे, तो उनके लिए जन्नत नहीं खुलती। बात समझ रहे हैं? कितने गिले पाल के बैठे मैं दिलों में, उसको नहीं माफ़ करना, उसको नहीं भूल सकती, उसने ये कर दिया, आप माफ़ कर दीजिए। और बिलीव में ये सबक बचपन से सिखाएं। बच्चे कितने मुकदमे लेकर आते हैं माँ के पास, भाई ने ये किया, वो खा गया, वो ले गया, बेटा इसको माफ़ कर दो, तुम बड़े हो जाओगे। बिलीव में आपसे ऊंची आवाज़ में बच्चा कहेगा जो मैंने तुम्हें माफ़ किया। बच्चों को शौक होता है बड़ा होने का, लेकिन हम अपने दिलों में भी किले पालते हैं। बच्चों को पता है अम्मी अभी भी दादी अम्मी से खुश नहीं है, हालांकि 20 साल से उनके साथ रह रही हैं। फूफो अपने घर चली भी गई हैं, अम्मी उसे फिर भी खुश नहीं, तो बच्चे देख रहे हैं। तो जब दादी फूफी के साथ आप खुश नहीं हैं तो आपका बच्चा आपसे कैसे खुश हो जाएगा? तो हमेशा फॉरगिव फॉरगेट रहिए, यही ज़िंदगी का हुसन है। और यकीन करें अभी तो शुरू में करना मुश्किल लगेगा ना, फिर मज़ा आएगा, आसान लगेगा, और एक वक्त आएगा क्रेविंग होगी, ऐसे ख़ारिश होगी हाथों को, कुछ था ही नहीं आजकल, मैं माफ़ क्यों नहीं, कैसे करूँ इसको माफ़ करूँ? बिलीव मी, आप हंस रहे हैं, एक दिन आप इसको समझेंगे, आपको इतना मज़ा आएगा इस काम में, यू विल फील, आपके अंदर रोशनी, आपके अंदर कुशादगी कि कोई तंग करे और मैं उसको माफ़ करूँ। और ये ऐसी खुफिया ने की है, कोई इश्तहार नहीं छुपाना पड़ता इसके लिए, कोई वेबसाइट पे नहीं डालना पड़ता, कानों कान खबर नहीं होती किसी को, लेकिन आप अल्लाह की नज़रों में प्यारे बन जाते हैं। फिर इसी तरह बुखारी की रिवायत है 6064, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न ज़न्न अक्ज़बुल हदीस, कहने फरमाया कि बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है। यानी ये भी एक बद अखलाकी है ना, बदगुमानी या नेगेटिविटी में इंशाल्लाह देखेंगे। और लोगों के ऐप ना टटोलो और बाकी सब कुछ करके क्या कहा, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करो, बुगस ना रखो, बल्कि अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। सवाल पैदा होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी से कितना नाराज रह सकते हैं। बुखारी की रिवायत 6077, ला यहिल्लु लिरजुलिन, किसी आदमी के लिए ये जायज़ ही नहीं, आई यहजुर अखाहु फौका सलासी लयाल, कि अपने भाई से 3 रातों से ज़्यादा अलग रहे, यानी उसको छोड़ दे। इस तरह के जब दोनों का सामना हो तो ये भी मुंह फेर ले, वो भी मुंह फेर ले, और इन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करें। अब एक सवाल पैदा होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या चीज़ रोकती है दरगुजर से? ईगो, अन्ना, शाबाश, मैं छोटा बन जाऊंगा, फिर मैंने कह दिया, फिर लोगों को पता चल जाएगा मैं ही झूठा था, राइट? तो हदीस सुन लीजिए, इसके बाद फिर इंशाल्लाह दिल नहीं ऐसा कहेगा आपका। सही मुस्लिम 6592, मा नकसत सदकतु मिन मालिन वमा जाद अल्लाहु अब्दन बी अफविन, लफ्ज़ है अफ़ के, बी अफविन इल्ला इज्जा। आपने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, इसको पीछे कर दें, आगे सुनिए, और जो बंदा मुआफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। वमा तवादा हदुन लिल्लाही इल्ला रफाहुल्लाह, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजजी इख्तियार करता है अल्लाह ताला इसका दर्जा बुलंद करता है। तो इज्जत कम नहीं होगी आपकी, ज्यादा होगी। और इससे यहाँ तो मुस्लिम के अल्फाज दिए ना आपको 6592, और रिवायतों से ये हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने कसम खाई थी तीन बातों पर कि सदका देने से माल कम नहीं होगा, इसी तरह माफ करने से इज्जत बढ़ती है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, सूरह यूसुफ पढ़ा, पढ़ी आपने? हजरत यूसुफ ने माफ किया कि बदले लिए? तो इज्जत बढ़ी कि कम हुई? भाइयों ने आखिरी दफा डाला तो किधर डाला? कहाँ मिले आखिरी मुलाकात बचपन में भाइयों की? कुएं में। तो जब भाई मिले तो कहाँ मिले? और यूसुफ वजीर खजाना बने हुए इस मिसर के। ये है अल्लाह ताला वमा जाद अल्लाहु अब्दन बी अफ़्विन। भाई तो सोच भी नहीं सकते थे कि यूसुफ वहाँ पहुँचे, इसलिए तो पहचाने नहीं, और यूसुफ उनको पहचान गए। तो ये वाक्यात, ये मिसालें आप और मैं क्यों पढ़ते हैं? अपने ऊपर लीजिए, अपने सारे काम क्यों खुद करते हैं, क्वेश्चन है मेरा आपसे। कुछ काम अल्लाह पर डाल दीजिए। क्या आपने खुद ही सारे बदले लेने हैं तो क़यामत का क्या करना है फिर? उस दिन जाके सोने आपने? याद रखिए, हर बदला इधर नहीं मिलता, मालिक योमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। माफ़ करे, अल्लाह पे डाले, जैसे अल्लाह को अपना वकील बनाए, आप माफ़ कर दें। आप लोग क्या कहते हैं, अच्छा इसको तो अल्लाह ही पूछेगा, आऊज़ु बिल्लाह, आप खुद पूछ लें। अल्लाह किसी को पूछे, ये तो बड़ी बददुआ है, कभी किसी को ना दे। और अमूमन हमने किन का दुख पाला होता है? सगे बहन भाइयों का। एक दफ़ा दर्स दिया था, ऐसी कई जगह, मेरा फेवरेट टॉपिक है, यही टॉपिक से मुझे अच्छे लगते हैं कि अमली चीज़ों पर आओ। और यकीन करें, मैंने सबसे कहा कि चलिए यहाँ बैठे बैठे किसी को माफ़ करते हैं, बोझ होता है दिलों पे, कंधों। ये शुगर, टेंशन, स्ट्रेस, ये यही नेगेटिव जज्बे हैं। खैर किस्सा मुख से, मैंने कहा चले आए यहाँ बैठकर हम किसी को माफ़ करते हैं। पीछे से आवाज़ आई, फूट फूट के एक खातून रोई, हिचकियाँ बन गई उनकी, लोग उनको चुप कराने लग गए। ज़रा बाद में जब मामला रफा दफा हुआ, पूछा हुआ क्या है, कहती आज यहाँ बैठ कर अपने सगे भाई को माफ़ किया, और पिछले 10 या 15 साल से नहीं बोल रही थी, माफ नहीं छोड़ना था, आज छोड़ दी बात दिल से। तो मैंने कहा फील कैसा हो रहा है? अब अच्छा फील हो रहा है। तो फिर जितना मर्जी अपने अंदर डाल लीजिए बोझ, आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है। फिर इसी के बाद एक और रिवायत है, तिरमिज़ी 2016, अब्दुल्ला जदली से, हज़रत आयशा से किसी ने नबी सल्लम के अखलाक के बारे में पूछा तो आपने फरमाया आप तानो तशनी करने वाले, फुखश काम करने वाले, बाजारों में चीखने वाले, और वला युजजी बिसैयति सैया, बुराई का बदला बुराई से देने वाले न थे। क्या थे? वला कि याफू व यस्फह, आप माफ़ करते और दरगुजर फरमाते थे। तो अल्लाह का नबी दरगुजर करे, माफ़ करे। क्या किया फतह मक्का वाले दिन आपने? ला तसरीब अलैकुम अल यौम, वही लफ्ज जो यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए बोले अल्लाह के नबी ने अपने दुश्मनों के लिए बोले। और एक रिवायत है तिरमिज़ी की 3558, माज बिन रिफाया अपने बाप से कहते हैं अबू बकर मिंबर पर खड़े हुए फिर रोए, हज़रत अबू बकर काम अबू बकरिन अलल मिंबरी सुम्मा बका, रोए, फ़कामा खड़े हुए फिर रोए, फ़काला फिर कहा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अलवली अलल मिंबरी, क्यों रोए? कहते हैं कि हिजरत के पहले साल मिंबर पर नबी सल्लम भी खड़े हुए और रोए और फरमाया, क्या फरमाया? सलुल्लाह अलफवा, अल्लाह से अफ मांग लो, वलाफिया اور عافیت مانگ لو. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُتَبَادَلْ يَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، کیونکہ کسی ایک کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر چیز نہیں ملی. یعنی مانگنے والی چیز ہے. ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. تو انشاءاللہ یہ دعائیں آپ نے میں نے کرنی ہے اپنے لیے، اور فارگیو فارگیٹ، اس سے انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی. کسی نے ایک سوال کیا، آپ بھی کر لیں، اس کو بھی معاف کر دیں جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی. سبھی کو سمجھ آ جاتا ہے. میں نے کہا اس کو بھی معاف کر دیں، آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کی زندگی اللہ نے نہیں شروع کر دی نا، ہو گیا. بعض کہتے نہیں، اس کو نہیں چھوڑوں گی. رشتہ ٹوٹا آپ کا کہیں سے، ادھر سے ٹوٹا، ادھر ٹوٹا، جڑ گئے نا کہیں، چلیے ان کے لیے بھی دعا کر دیں. آپ کہتے نہیں، ان کو نہ کہیں جڑے، آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے نیگیٹیوٹی، دیکھیے نیگیٹیوٹی بھی دیکھیے، جو بندے کا مائنڈ جس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ کتنی چھوٹی سوچ رکھتا ہے. رشتہ ہوتا ہے، مثال لے لے اے بی کا، اے اور بی کے بچوں کا رشتہ ہوتا ہے، ٹوٹ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، شکر کیجئے منگنی ٹوٹی. اب کیا ہو گیا، آپ ایک ہی بیٹی کا رشتہ کہیں ہو گیا، ایک کا بیٹے کا کہیں ہو گیا، وہ اپنے گھر خوش، آپ اپنے گھر خوش، تو یہ کھڑے ہو کے بد دعائیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جدھر ان کا رشتہ ہونے لگے جا کر وہاں بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ مجھے ہو گیا تو ہو گیا، آپ کا کیا جائے؟ آپ کہتے نہیں ان کا نہ ہو. اچھا بالفرض ایک ہی بیٹی کا نہیں ہو رہا کہیں رشتہ، تو بی کے بیٹے کا ہو گیا، آپ کہتے اس کا کیوں ہوا ہے؟ بالفرض اس کا نہ ہوتا، آپ کو کیا ملنا تھا؟ آپ دوبارہ کرنا چاہتی ہیں ان سے؟ یہی طلاق اور بات والے معاملوں کو دیکھیے، آپ کو کیا لگے؟ بلکہ جلدی سے کیجیے دعائیں، مانگیے ان کی بیٹی کا بھی ہو جائے، آپ کے بیٹے کا ہو جائے، تاکہ ان کو، آپ کو یہ زخم بھول جائے. وہ اپنی بیٹی کو دیکھیں گے تو ان کو دکھ ہوگا، آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں گے آپ کو دکھ ہوگا. فارگیو فارگیٹ خود جی. آپ کہتے ہیں صحابہ، ایک جگہ شادی ہوئی، کسی وجہ سے نہیں نبھی، کچھ نہ کچھ ایشو ہوتا ہے، دو اچھی چیزیں بھی ساتھ نہیں رہتی. اس عورت کو طلاق دی، عدت گزری، کسی اور برادر کو جو اچھے برادر تھے اور شادی کرنا چاہ رہے تھے، ان کو کیا ریکمینڈ کرتے؟ جب وہ فلاں عورت فارغ ہوئی اس سے کر لو. کہا تم نے اس کو چھوڑا اور مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا میں نے چھوڑا ہے، لیکن وہ اچھی عورت ہے، تمہارے حق میں اچھی ہوگی. آج یہ سوسائٹی ہے، تزکیہ کا یہ لیول ہے، یہ ہے روگ، یہ جنگیں لڑ رہے ہیں، اس لیے دشمنوں سے کون لڑے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہمیں خود حجت بنا دے. جی آپ ان کو بھی معاف کر دیں، بالکل کر دیں. دیکھیے آہستہ پلیز، دیکھیے میں آپ کو جس کو ریزننگ کرنا سکھاتی ہوں. کسی کی انٹرفیرنس سے شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا، اور وہ غیر نہیں ہوتے، وہ گھر والے ہی ہوتے ہیں، آپ نہ بتائیں میں بتا دیتی ہوں. اب بالفرض جھگڑا ہو گیا، گھر ٹوٹ گئے، یا گھر روز جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا یہ نہیں ہے کہ ان کو معاف کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں یا میری بات کریں. بلیو می، آپ یقین کریں، لوگوں میں جینا اور لوگوں کو خوش رکھ کے جینا، خر وہ لوگ جن کو آپ پہ گلے، از اے آرٹ، دس از این آرٹ. آپ جس کو بھی سمجھتی ہیں کہ وہ جھگڑا کرتا کراتا ہے، خود بھی لگتا ہے آپ کو اپنا یا کسی اور کا گھر یا کسی دوست کا، یقین کریں اس بندے سے اکیلے میں ملے. آگے ٹاپک آ رہے ہیں، ہم کل سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، ظلم کے ٹاپک میں آپ کو جواب ملے گا اس کا. اس کو میں روک لیتی ہوں. جی آپ جی سلب جی، ریزن دیکھیں نا کہ کس کا قصور تھا، کیا تھا، تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے. جی بالکل، اگر آپ مطلب اس میں مزے نہ لیں، بلکہ آپ ان کو جھگڑے کو ختم کروا دیں. جی جی یہ بڑا اچھا سوال ہے، دور رہ کے بھی اچھا سوال کیا انہوں نے. دیکھیے یہ جو جملہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن میرے دل سے بات نہیں نکلتی، تو معذرت کے ساتھ دیٹ شوز آپ نے اس کو دل سے معاف نہیں کیا. معاف کرے، لوگ کہتے ہیں کچھ کچھ ہوتے ہیں. دیکھیے ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی نا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. مسلم ہوئیں، آئیں، بیعت ہوئی، تھوڑی کراس کوسچننگ بھی آئی. آپ نے کیا کہا کہ ہندا میرے سامنے نہ آنا زیادہ. अब ना सामने आने को, फिर आप एंगल में रख लें कि ये थोड़ी कि वो आके सामने बेपर्दों के बैठती थी। मुराद कह के आपको देखकर मुझे चचा याद आता, लेकिन ये एक जुमला था वल्ला, ही ये कोई हमेशा का आपका अमल नहीं था। कुछ जगह होती है चोट पड़ी है, तो फिर ऐसे रिश्तों में देखिए ना तो इतने मीठे कि अगला आपको खा दे, और ना इतने कड़वे कि उगल दे। कुछ ज़रूरी हर एक को मिले। आप देखिए क्या आप अपने सारे ख़ानदान की लिस्ट बनाएं, चले 20 लोगों की बना लें, हर वक्त उनको मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, पाकिस्तान जाते हैं या इंडिया जाते हैं, जब जाते हैं कोशिश भी करते होंगे, 2-4% रह ही जाते होंगे ना, तो क्या उसका आप उनसे नाराज़ हैं? नहीं है ना। ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं उससे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलता। अभी हदीस सुनाइए ना कि वो उसको देखता रहता है, वो उसको देखता रहता है, वो सलाम करता है जवाब नहीं देता, वो उसको देख कर मुंह फेर लेता है, वो उस शादी में इसलिए नहीं आ रहे कि अपने फलानों को बुलाए। जरा हमारे पाकिस्तानी इंडियन कल्चर की जरा जंगें तो सुनिए। आपने उनको बुला लिया तो इसलिए अब हम नहीं आएंगे। अच्छा फलां अगर मिसाल एक मारते है, उसने 2 शादियां की हैं, तो अगर आपने उसकी पहली बीवी को बुला लिया तो दूसरी कहती मैं नहीं आऊंगी, और दूसरी को बुलाए तो पहली के बच्चे कहते हम नहीं आएंगे। अल्लाह के बंदो इतने अहम हो, ये असल में जात का बुत, इसको तोड़ना है। जी
वो मैं ये भी पढ़ा था ना कि जिनके दिल में कुदूरत होगी वो जन्नत में नहीं जा सकेंगे जब तक वो नहर में डुबकी
जी कीना की दुनिया में अमाल कबूल नहीं होते, अल्लाह सबके अमल कबूल करता है, कीने वाले के अमल नहीं करता। तो हमेशा देखिए इन चीज़ों पे बात करें। और ये सब किसके लिए सुन रहे हैं आप? अपने लिए सुन रहे हैं। आप ज़्यादा खुश दिखेंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बीमारियां ख़त्म होंगी, अगर आपने ये अखलाक A to Z पे अमल कर लिया। यकीन करें मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव से। और ये कब होता है ये भी बता दूँ, वो जैसे किसी ने कहा, वो भी पढ़ने पढ़ाने का ही काम करती थी, किसी ने उनको कुछ सुनाई 4-6 खरी खरी, वो जल्दी में थी और कहीं जाना था, उन्होंने कहने लगी जवाब बड़े देने आते हैं पर वक्त नहीं है, उठी और चल पड़ी। ये करें, बिजी करें खुद को। घर में फैमिली में जो बंदा झगड़े कराता है या किसी की वजह से घाट टूटता है, उस बंदे को बिजी करते हैं, उसको पकड़ के दें मसरूफियत, दें उसको बड़ी सी। ये फारिग लोगों के काम, जो बच्चा बहुत सताता है उसको काम दे बैठ के लहसुन छीलो। यकीन करें ये फरागत, ये फारिग कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्शिप, डेवल्स वर्कशॉप। खाली जहन में फजूल बातें चलती रहती हैं, और मज़े की बात है सास तो ऐसी ही बदनाम है। अब कई रिसेंटली इतने केसेस मेरे सामने हैं, सुसर सुसर बहू के साथ नहीं लगती उनकी, तनकीद है, झगड़े हैं, बहस है, सास नहीं है बीच में, सुसर है। तो अब ऐसे सुसर जिनको आपने घर में बिठा दिया, सारा दिन वो खबरें सुनते हैं और TV चैनल घुमाते हैं, फिर वो बहू के साथ तनकीद तो करेंगे ऐसी जैसी। तो लाइफ उनकी सेट करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है, चले ये अब छोटे छोटे 2 टॉपिक है, इसको कर लें कि ना करें, ब्रेक लेनी है कि कर लें? जाइए ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि अब आप लेंगे तो 12 बजे बुलाऊंगी वापस आपको। देखिए कल की ब्रेक अगर मैं आपकी काट लूँ ना, तो आज ब्रेक आपकी नहीं बनती, तो ये सिर्फ एहसान है। कल मुझे बहुत दुख है आपने आधा घंटा ब्रेक ली, आज 10 मिनट ब्रेक लेके वापस आइए। जाइए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।